તારીખ 27/7/1997 શ્રી સ્વાનુભૂતિ દર્શન પ્રશ્ન 214 અને 215 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સંઘ વચન નંબર 156.
क्या वेद ज्ञान यही स्वानुभूति प्रकट करने का उपाय है? वेद ज्ञान से ही स्वानुभव प्रकट होता है या और कोई विधि है, पद्धति है? ऐसा प्रश्न है. समाधान, वेद ज्ञान की धारा द्वारा स्वानुभूति होती है. स्वानुभूति का कारण या उपाय वेद ज्ञान ही है. बारंबार बार बार वेद ज्ञान की तीक्ष्णता करने से स्वानुभूति होती है. वेद ज्ञान उग्र होता है. वेद ज्ञान में भीतर में क्या है कि जो हमने अनादि से पराश्रय लिया है वो पराश्रय छोड़ने का प्रयास है और स्वाश्रय करने का प्रयास है, तो उसमें उग्रता होती है. तो स्वाश्रय में जोर आता है, वजन आता है, और बराबर स्वाश्रय होते से स्वानुभव होता है. स्वानुभव के पूर्व क्षणों में कोई दूसरी प्रवृत्ति खास तौर से नहीं होती. मन की प्रवृत्ति होती है, जो मन में स्वरूप के विकल्प चलते हैं, वो भी स्वरूप महिमा के विकल्प चलते हैं. कैसे चलते हैं? वो विकल्प का आश्रय वहां बना रहता है. जब तक आश्रय बना रहता है वहां तक स्वानुभव नहीं है. तो आश्रय छूट जाता है और स्वरूप का अवलंबन आता है तब स्वानुभव होता है. राग का अवलंबन छूटता है, विकल्प का अवलंबन छूटता है और स्वरूप का अवलंबन होता है तब स्वानुभव होता है. तो उस अवलंबन लेने में उग्रता आएगी, यानी पुरुषार्थ बढ़ेगा, परिणाम का जोर बल बढ़ेगा, तब स्वानुभव होता है. किसी को उग्रता तुरंत ही होवे तो तात्कालिक उसको स्वानुभव हो जाता है. कोई ऐसे साधक होते हैं उसको बहुत जल्दी से उग्रता आ जाती है, एकदम उग्रता आ जाती है. ऐसे वीर्य गुण का क्षोभम वाला जीव होता है कि उसका पुरुषार्थ वैसे ही चलता था, पहले उन्मुख चलता था, अब सन्मुख चलने लगा. तो उसमें उग्रता तो थी और उग्रता आ गई तो तात्कालिक उसको स्वानुभव होता है, अल्पकाल में होता है. ऐसे जीव होते हैं. ऐसे जीव कुछ एक होते हैं, उसकी संख्या हमेशा हमेशा अल्प होती है. उग्रता वालों की संख्या अल्प होती है. बहुभाग जीवों को अभ्यास की उग्रता करने से स्वानुभूति होती है. बहुभाग जीवों को तो प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा चलती है, फिर बाद में उग्रता आती है. एकदम तुरंत उग्रता आवे ऐसे जीव बहुत कम होते हैं. ऐसे मोक्ष मार्ग में भी है. कि मोक्षमार्गी धर्मात्माओं में भी तीव्र पुरुषार्थ वाले जीव कम होते हैं, मंद पुरुषार्थ वाले ज्यादा होते हैं, बहुभाग होते हैं। तो जो मंद पुरुषार्थ वाले हैं वो शास्त्रादि में अटकते अटकते आगे बढ़ते हैं। क्या सुधा जी ने लिया है और जगह तो अटकने का ज्ञानी को प्रयोजन है ही नहीं, लेकिन देव गुरु शास्त्र में उसका उपयोग चलता है। तो उसमें भी शास्त्र है, उसका विस्तार बहुत है, शास्त्र का विषय का विस्तार बहुत है, तो वहां समय निकल सकता है। वो तो समय निकलने का कारण पुरुषार्थ शास्त्र पर गया वो है, तो उतनी अटक मानी जाती है। और कोई कुछ एक जीव ऐसे होते हैं, कोई कुछ जीव, तो उसको शास्त्र वास्त्र पढ़ना सुहाता नहीं है। वो अपने भीतर के अंतर्मुख के काम में लगे रहते हैं, भेद ज्ञान की उग्रता में रहते हैं। उनको भेद ज्ञान की उग्रता होकर के स्वानुभव एकदम हो जाता है। ये सामान्य परिस्थिति जीवों की ऐसी है। समय सार के मोक्ष अधिकार के 180 कलश में तो भेद ज्ञान यानी स्वानुभूति की बात लिया है। तो भेद ज्ञान का अर्थ भी स्वानुभूति कोई कोई ज्ञानी आचार्य करते हैं। भेद ज्ञान का अर्थ भेद ज्ञान भी है और भेद ज्ञान का अर्थ स्वानुभूति भी है। तो समय सार के में ये भेद ज्ञान का विषय ज्यादा चला है, तो बहुभाग तो वहां राग और ज्ञान का भेद करने का ही प्रयोग का विषय चला है। लेकिन 180 कलश में स्वानुभूति को भेद ज्ञान कहा, भेद ज्ञान को स्वानुभूति बोल दिया है। ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि भेद ज्ञान का फल स्वानुभूति है। तो भेद ज्ञान पर्याप्त मात्रा में हो गया तो स्वानुभूति को ही भेद ज्ञान बोल दिया, ऐसा भी बोल सकते हैं।
तो वास्तव में उपचार से बोलने में अंतर है,
नहीं, कारण कार्य की अभेदता से, कारण कार्य की अभेद विवक्षा उसको कहते हैं। कारण कार्य की भेद विवक्षा भी होती है, भेद अपेक्षा, और अभेद अपेक्षा में अभेद विवक्षा भी होती है। कहने की पद्धति बहुत प्रकार की है, अपने 36 तो का एक प्रकरण लिखा है तत्वानुशीलन में, विवक्षा 36 ऐसा करके लिखा है। तो 36 कथन करने की पद्धति का दृष्टांत दे करके स्पष्टीकरण दिया है। मैं कहने की पद्धति अनेक प्रकार की संसार में भी है, जैसे 10 मिनट लेट हो गया कोई और गाड़ी या प्लेन छूट गया, तो क्या बोलेंगे? क्या आप 10 मिनट लेट आए ऐसे नहीं बोले, काम सब बिगड़ गया, आगे का प्रोग्राम चौपट हो गया, आपने तो आने आने में शाम कर दिया। सुबह के 8 बजे में 10 मिनट लेट हुआ, बोलेंगे क्या आपको आने आने में ही शाम हो गई थी? हाँ, ऐसा बोलेंगे, थपका देते ना। और कभी ऐसा बोलेंगे आप तो इतना हर काम में देर लगाते हैं, पूरा भाव निकल जाता है उसमें, क्या भाव निकाल दिया है, लेट कर दिया, ऐसा नहीं बोले, भाव निकाल दिया है। हाँ, ये बोलने की पद्धति होती है। और कोई परेशान करते हैं तो क्या बोले, आप तो हमारा खून पी गया, क्या अपना फिर लोही पी गया, खून पीता है क्या, एक बोलने की पद्धति होती है। अनेक प्रकार की बोलने की पद्धति होती है। ऐसे यहाँ 180 कलश में वेद ज्ञान अर्थात स्वानुभूति की बात किया है। वेद ज्ञान द्वारा तात्कालिक भेद हो जाएगा और उसमें तुझे स्वानुभूति होगी, ऐसा अभिप्राय वहां है कि वेद ज्ञान द्वारा तात्कालिक आत्मा और राग भिन्न भिन्न हो जाएगा और स्वानुभव तात्कालिक हो जाएगा, ऐसा दिखाने के लिए उनको वहां स्वानुभूति बोला है। विकल्पवादी भूमिका में लेना हो तो बार बार अभ्यास यानी बार बार वेद ज्ञान की उग्रता करने से तुझे स्वानुभूति होगी, ऐसा कहेंगे। स्वविकल्प भूमिका में, स्वविकल्प दशा में वेद ज्ञान की चर्चा चलती है तो वहां वेद ज्ञान कारण है और स्वानुभूति कार्य है। वो भी भेद ज्ञान कैसा कि बार बार लगातार भेद ज्ञान चले और उग्रता से चले, एक लय से चले, बीच में दूसरा परिणमन होवे नहीं और उग्रता हो जाए तो स्वानुभूति होती है। यहाँ निर्विकल्प स्वानुभव के पूर्व क्षणों में ऐसा प्रकार होता है भेद ज्ञान का, जो उग्रता रूप होता है और लगातार होता है। उग्रता होने से उसमें बीच में छेद नहीं पड़ता, अंतर नहीं पड़ता, एक धारावाही चलता है, लगातार चलता है। वो विकल्प वाली भूमिका में उस वक्त विकल्प है परंतु विकल्प है सो मैं नहीं हूं। विकल्प वाली भूमिका में विकल्प है लेकिन भेद ज्ञान में उसका निषेध आता है तो मैं विकल्प नहीं हूं। अपेक्षा से अपने अस्तित्व में होता है, क्षेत्र की अपेक्षा कहो तो अपने अस्तित्व में होता है, चारित्र गुण की अपेक्षा से कहो तो अपने में होता है, अपने भाव में होता है, अपने क्षेत्र में होता है, अपने द्रव्य में होता है। फिर भी भेद ज्ञान उसका निषेध करता है कि वो मैं नहीं, क्योंकि वो विकृति है, विकल्प है वो विकृति है, और विकृति है वो स्वभाव से विरुद्ध और स्वभाव से अलग होती है।
अवलंबन
छोड़ने का पुरुषार्थ है, दृष्टांत में शरीर का रोग है तो शरीर की अवस्था है, शरीर की अवस्था होने से वो रखने लायक है ऐसा नहीं है। क्यों कि जो शरीर का स्वभाव है वो उसका निषेध करता है, उसको प्रतिकार शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? रोग प्रतिकार शक्ति। ये शरीर का स्वभाव है, जैसे यहाँ कुछ लग गया वो अपने आप ठीक क्यों होता है? शरीर का स्वभाव है, छेद हो गया, काप हो गया, खड्डा हो गया, घाव, तो घाव पूरा हो जाता है क्यों? शरीर का स्वभाव है, उसको रोग प्रतिकार शक्ति कहते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं डॉक्टरी भाषा में रेजिस्टेंस पावर, क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस पावर। जिसका रेजिस्टेंस पावर अच्छा होता है उनको रोग जल्दी नहीं आता और आता है तो जल्दी मिट जाता है, और जिसका रेजिस्टेंस पावर कमजोर है खास करके बच्चों का बुढ़ापे में, तो उनको रोग बार बार आ जाता है क्योंकि रेजिस्टेंस पावर उसका कम है। ऐसे आत्मा में विभाव का प्रतिकार करने का रेजिस्टेंस पावर है और वो पावर की प्रक्रिया प्रोसेस भेद ज्ञान के दौरान बहुत अच्छी तरह विधि पूर्वक यथार्थ पद्धति से होती है कि जिसके फल में स्वानुभव यानी धर्म प्रकट होता है, स्वभाव दशा प्रकट होती है। स्वानुभव माने स्वभाव दशा प्रकट होती है। विकल्प वाली भूमिका में विकल्प है परंतु विकल्प सो मैं नहीं, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ। देखो ये कैसे पद्धति में काम होता है। बहुत शुरू में मुमुक्षु जीव विकल्प का दोष का स्वीकार करता है अवलोकन के कारण कि मेरा दोष है। वही भेद ज्ञान की भूमिका में उस दोष का निषेध करता है कि ये मैं नहीं हूँ। अटपटी बात हो गई ना, पहले स्वीकार करना होता है। अगर स्वीकार ही नहीं करेगा तो निकालने का सवाल रहता, क्योंकि मेरा दोष नहीं है तो मैं क्यों निकालू। बात तो जब दोष ही मेरा नहीं तो मैं क्यों निकालू। मेरा जान करके मेरा नहीं है, तो दोष को अपना जाना वो व्यवहार है, पर अपना नहीं है वो निश्चय है। जीन नीति में व्यवहार का स्थापन करके उत्थापन करने में आया है। क्या व्यवहार को व्यवहार के स्थान में स्थापन करके फिर उसका उत्थापन करने में आया है। ये पद्धति है, अपने सम्यक्त्व के आर्टिकल में लिया है शुरू में। व्यवहार को व्यवहार के स्थान में स्वीकार करना वो समय है, और व्यवहार को निश्चय के स्थान में अस्वीकार करना वो सम्यक्त्व है। दोनों बात लिया है, लिया है कि नहीं लिया। इसलिए अन्य मति जैनों की बात समझ नहीं सकते। ये लोग क्या बात करते हैं, कभी कहते हैं कि उसका स्वीकार करो, कभी कहते हैं कि उसका स्वीकार मत करो। ये वो पटांग बात कैसे करते हैं, विचित्र लगता है। सांख्य मत आत्मा का अभेद स्वरूप को स्वीकार करता है, जो सम्यक दर्शन का विषय है जी। और जिनेन्द्र वर्णी ने तो शब्दकोश में ऐसा लिखा है, सांख्य का आया ना तो सांख्य शब्द आया, तो उसमें क्या लिखा है मालूम है? सम्यक दर्शन के विषय का विकृत स्वीकार को सांख्य कहते हैं। क्या क्योंकि वो सांख्य वाले ऐसे कहेंगे आत्मा एक है, अभेद है, निर्विकल्प है। वही ज्ञान का श्रद्धा है, वो परम तत्व ऐसा ही है, ऐसा लेंगे वो। परम तत्व कैसा है? एक है, अभेद है, अखंड है। जैसा जैन दर्शन में लिया है उसकी पकड़ है वहां, लेकिन उसकी पकड़ में दूसरे पकड़ दूसरा पड़खा है उसका स्वीकार नहीं है। वो पर्याय को नहीं स्वीकारते, पर सम्यक दर्शन पर्याय को नहीं स्वीकारते। सम्यक दर्शन पर्याय को नहीं स्वीकार करता, और सांख्य लोग भी पर्याय का स्वीकार नहीं करता, लेकिन वो एकांत कर लेते हैं उसका कि पर्याय है ही नहीं। पर्याय व्यवहार नहीं का विषय है। तो ग्यारहवीं गाथा में अभूतम अर्थम क्या कहा? वो अभूत अर्थ है ही नहीं। आप इसमें अर्थ है लेकिन अभूत है। लेकिन अर्थ है वो बात है, वो लोग उसको पूरा निषेध कर रहे। तो कहीं दर्शन में अभेद का स्वीकार है, अभेद का आदर है, अभेद का अनुभव है, अभेद रूप से उसको पूछो, जिसको अभेद अनुभव हुआ है उसको पूछो कि केवल अभेद है या इसके कुछ भेद प्रभेद आप जानते हैं। तो कहेंगे कि बहुत से भेद प्रभेद हैं। कितने हैं? पर सांख्य को पूछोगे भेद की बात ही छोड़ो, भेद कल्पना है, भेद है वो कल्पना है। और जैन दर्शन भी भेद कल्पना शब्द का प्रयोग करता है लेकिन अभेद में भेद है, वो कह अभेद में भेद है ही नहीं। और ऐसा वचन आएगा निश्चय के प्रकरण में कि अभेद में भेद है ही नहीं, फिर भी अनंत भेद प्रभेद ये भी जिनागम का विषय है। और भेद मात्र नहीं है, क्या भेद मात्र नहीं है, वो अध्यात्म का विषय है, आगम का भी विषय है और अध्यात्म का भी विषय है। तो अभेद अभेद करने वाले को ज्ञानी पूछते हैं कि अभेद का भेद भेद तो कुछ बताइए। तो जो अभेद अभेद कल्पना से करता है बोलेगा कि अभेद में भेद नहीं है, क्या बताएं? तो देख हम तुमको बताएं, बताते ज्ञान दर्शन चारित्र आदि अनंत अनंत गुण है। कैसे हैं? अनंत गुण है, ऐसी बात होती है कि विकल्प है लेकिन विकल्प में नहीं हो, विकल्प विकल्प में है, विकल्प मेरे स्वरूप में नहीं है, वो बात है। वो कृपाल देव ने लिखा इसलिए ज्या ज्या जे जे योग्य छे तहां समझू ते त्या त्या ते ते आचरे आत्मार्थी जन। ये कोई कर लेता है तो कर लेता है, सभी को होती है, ऐसा नहीं है।
किस तरह नहीं हुआ? किस तरह नहीं हुआ?
बस वो प्राथमिक भूमिका में स्वीकार करना पड़ेगा। जो अपना दोष को देखता नहीं है उसकी हालत ऐसी है कि वो एकांत पर का ही दोष देखता है। थाली में हलवा आया इसलिए मुझे राग हुआ, वरना मैं राग नहीं करता, मेरे को विकल्प भी नहीं था इसका, पहले तो विकल्प भी नहीं था लेकिन हलवा आया मेरे को राग हुआ, तो उसमें मेरा क्या दोष है? ऐसे जो अपना दोष नहीं देखता है अनादि से एकांत पर का दोष देखता है हर बात में। आपने मेरा अपमान किया इसलिए मुझे क्रोध आया, वरना मैं क्रोध नहीं करता। ऐसे मेरा अपमान करे तो क्रोध हुआ, इसमें तो मेरा क्या दोष है, अपमान करने वाले का दोष है, ये बात आएगी। तो पहले इस भूमिका में जो अनादि से खड़ा है उसको कहते कि तू पहला अपना दोष स्वीकार कर। पर्याय दृष्टि में ही, पर्याय दृष्टि में ही करवट बदलनी होती है। जो परावलंबन में पराश्रय में पड़ा है उसको करवट बदलाए कि तू सत्पुरुष के शरण में जा, और वो उनको आसान पड़ता है। क्यों? कि वहां का वहां करवट बदलनी है उसको। वो पर्याय में ही दूसरे का दोष देखता था, और पर्याय में अपने दोष देखने लगा। पर्याय में ही पराश्रय करता था, पर्याय में पर में सत्पुरुष ले लिया, फिर यहां से उठाएगा क्या? ऐसे नहीं, अब तुम आगे बढ़ो, इस तरह आगे बढ़ो, इस स्वभाव को देखो, स्वभाव में अपनत्व करो, निर्दोष स्वभाव में अपनत्व करो, स्वभाव का निषेध, विभाव का निषेध करो, दोष का निषेध करो। ऐसे सीढ़ी के, सीढ़ी पे पैर रखते हैं क्यों? उठाने के लिए, तभी ऊपर जाया जाता है। अगर ऊपर जाना है तो सीढ़ी पे पैर रखना भी पड़ेगा और रखा है वो उठाना भी होगा, तभी तो ऊपर जाएंगे। जब उठाना है तो रखा क्यों? ऐसा कोई प्रश्न करता है वो ऊपर जाने की प्रक्रिया को समझता नहीं है। ऐसे जो व्यवहार में भी नहीं है उनको व्यवहार में लाते हैं, जो व्यवहार में आए उसको निश्चय में लाते हैं, ऐसी बात है। और वही ऊपर उठने की पद्धति है। हाँ, अनादि से धर्म के क्षेत्र में प्रवृत्ति करने वाले को व्यवहार नहीं का पक्ष है, इसको व्यवहार का पक्ष बोलते हैं। जब उसको स्वरूप का भाव भाषण होता है तब उसको निश्चय स्वरूप का पक्ष आता है। तो पक्ष में ही पक्ष में पक्ष बदलता है, सीधा कोई पक्षांतिकरण तो हो सकता नहीं है, फिर निश्चय में आने से पक्षांतिकरण होता है, निश्चय का पक्ष भी छोड़ देता है, तब स्वानुभव होता है। पद्धति ऐसी है और वो सही पद्धति है, वो वैज्ञानिक पद्धति है, साइंटिफिक बात है। कैसे कि एक आदमी ऐसा चक्कर 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 फरता है, फिर फदुड़ी फरे से ना, उसको बोलो कि तुम उल्टा चक्कर फरते हो, ऐसे नहीं घूमो, ऐसे घूमो, तो पहले धीरे धीरा हो जाना पड़ेगा, फिर वो खड़ा रह जाएगा, फिर उल्टा चक्कर चालू करेगा। अगर उल्टे चक्कर में उल्टा चक्कर चालू करे तो गिर जाएगा, गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो उल्टा चक्कर कहां से फिरेगा फिर? क्यों? कि साइंटिफिक पोजीशन ही वही है कि उसको धीरा होकर के, खड़ा होकर के फिर उल्टा चालू करना पड़े। ये ब्रेक लगाते हैं, हमारे गाड़ियों में ब्रेक क्यों है? पावर जनरेट करते हैं और पावर का, शक्ति का उपयोग करते हैं इंजन का, फिर उसी शक्ति को रोकने का भी एक साधन क्यों रखते हैं? एक्सीडेंट नहीं हुए, वो भी जरूरत पड़ती है रोकने की। पावर उत्पन्न भी करना और रोकने के लिए वहां व्यवस्था भी रखना, डिवाइस कहते हैं उसको। और उसका भी उपयोग कैसे है कि फुल स्पीड में आप ब्रेक नहीं लगा सकते, अगर लगा ले तो गाड़ी पलटी मार देगी, उल्टी नहीं हो जाती गाड़ी, यही कारण है। फुल स्पीड में जिसने ब्रेक लगाई गाड़ी उल्टी हो जाएगी, क्योंकि परमाणु गाड़ी के प्रत्येक परमाणु स्पीड में थे, अकेले पहिया स्पीड में नहीं थे, परमाणु अंदर बैठने वाले सबको धक्का लगता है ना, सब स्पीड में है। तो पैर पहिए को तो ब्रेक लगी, दूसरे परमाणु को तो ब्रेक लगी नहीं, वो तो ऐसे ही धस रहे हैं, तो धसेंगे ही धसेंगे, इसका क्या हुआ? पलटी मार के देगा। प्लेन को उतरने में रनवे क्यों है? सीधा क्यों नहीं उतरता? क्योंकि ऐसे तो आता है, ऐसे थोड़ी आता है, ऐसे आता है तो उसको आस्ते 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 ब्रेक लगा करके फिर खड़ा रहना होगा। विज्ञान है, परिणमन का ये परिणाम भी एक गति है, परिणाम को का जो पहलू है इसमें एक पहलू गति का है। शक्ति गति जाति स्थिति एक परिणाम के चार पहलू है, वो गति भी एक पहलू है। इसलिए विकल्प का निषेध करता है वेद ज्ञानी, विकल्प का निषेध करता है। मैं ज्ञायक हूँ ज्ञायक हूँ ऐसी ज्ञाता धारा की उग्रता द्वारा उसको स्वानुभूति होगी। मैं ज्ञायक हूँ ऐसे विकल्प से स्वानुभूति नहीं होगी, ज्ञाता धारा से स्वानुभूति होगी। ख्याल करने की बात, कुछ लोग विकल्प में चढ़ जाते हैं, भेद ज्ञान के विकल्प, राग में नहीं मैं तो ज्ञायक हूँ, मैं राग नहीं मैं ज्ञायक हूँ, मैं राग नहीं मैं ज्ञायक हूँ। तो पहले तो हम ऐसे करते थे कि मैं राग नहीं मैं तो ज्ञायक हूँ, अब तो ऐसा करते हैं कि मैं ज्ञायक हूँ, राग नहीं वो भी हमने छोड़ दिया, मैं तो अकेला ज्ञायक हूँ ज्ञायक हूँ ज्ञायक हूँ, ऐसा ही विकल्प करते हैं। विकल्प लेकिन समझने में विकल्प में चढ़ जाए वो परिस्थिति में आना नहीं चाहिए, ये बात है। दोष का अवलोकन नहीं करता है उनके लिए अवलोकन करने का बहुत वजन देने में आता है, अवलोकन से ही भेद ज्ञान में जाया जाता है, अवलोकन के बाद का स्टेज भेद ज्ञान है, क्योंकि अवलोकन में परिचय हुआ, जाति की परख आने लगी, वहां से भेद ज्ञान चालू होगा। शाम को चर्चा क्यों रखते हैं, जो कोई अपना अवलोकन करता है वो उसकी चर्चा करें तो उसका अवलोकन ठीक है या ठीक नहीं है, वो खुद को तो अपने आप को पता नहीं चलता है, तो उसकी चर्चा होने से कहीं चूक होती है वो निकल सकती है, लेकिन चर्चा ही नहीं करे अपने परिणामों की वो निकलेंगे कैसे, उनको तो निकलना बनेगा ही नहीं। तो अपन समय तो रखते हैं आधा घंटे का, लेकिन कभी आधा घंटा भी नहीं चलता है। अगर सभी अपनी चर्चा करेंगे तो आधा घंटा कम पड़ेगा, फिर बारी करनी पड़ेगी कि आज ये तीन जने चार जने करेंगे, कल दूसरे चार जने करेंगे, परसों तीसरे चार जने करेंगे, तब तो 16 के बात होगी। ये जिसको निकालना है उसको तो अवलोकन करना पड़ेगा, अवलोकन करके उसका चर्चा भी होगी, तब तो पता चलेगा कि अवलोकन है या कुछ कहीं और बात है, विचार है या अवलोकन है, या अवलोकन में भी कई क्या क्या परखे हैं, कितने परखे हैं, कहाँ भूल होती है, कैसे होती है, ये बात आइए, फिर भेद ज्ञान का विषय है, और उस भेद ज्ञान की उग्रता के बाद सहानुभूति है। सहानुभूति उतनी दूर है, पहले से ही लॉक लगा दें, अवलोकन ही नहीं हो तो उनके लिए तो कोई आगे की बात आने वाली है ही नहीं। ये 214 हुआ, 215 परिणति और उपयोग में क्या अंतर है, परिणति तो सब गुण की बनती है, उसमें ज्ञान गुण की भी बनती है, और उपयोग तो ज्ञान का व्यापार को ही कहते हैं, दूसरे परिणामों को उपयोग कहते हैं नहीं है। समाधान, उपयोग और परिणति में अंतर है, दोनों एक तो है ही नहीं। ज्ञानोपयोग और ज्ञान परिणति दोनों में अंतर है, दोनों एक नहीं है। वेद ज्ञान की धारा रूप उसकी परिणति तो कायम चालू ही है, किसको? ज्ञानी को। ज्ञानी को वेद ज्ञान की को तो ज्ञानी तो अपने से ही बात लेंगे ना, इसलिए वो कहते हैं कि वेद ज्ञान की परिणति रूप तो धारा चालू है, जब उपयोग तो बाहर में आवे और अंतर में आवे। उपयोग दो तरह का होता है, परिणति दो तरह की नहीं होती। परिणति में वेद ज्ञान की धारा है, उपयोग और वो अंतर्मुख है, परिणति है वो अंतर्मुख है। उपयोग अंतर्मुख भी होता है और बहिर्मुख भी होता है, दोनों प्रकार का होता है ज्ञानी को, जबकि इसकी परिणति अंतर्मुख रहती है, ये फर्क है। वेद ज्ञान की धारा रूप उसकी परिणति तो कायम चालू है, जबकि उपयोग तो बाहर आता है और अंतर में भी आता है। उपयोग अंतर में आवे तब सहानुभूति होती है, सहानुभूति तो निर्विकल्प शुद्ध उपयोग को बोला जाता है, उसी को सहानुभूति मुख्य रूप से बोलते हैं। तो उपयोग अंतर में आवे तब सहानुभूति होवे, फिर बाहर आवे, उपयोग बाहर आने पर भी परिणति तो चालू ही है, परिणति में फर्क पड़ता नहीं है, इसलिए उसको लब्धि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लब्धि और उपयोग, चर्चा किया है पंचाध्यायी के उत्तरार्ध में, बहुत चर्चा किया है परिणति और उपयोग की, चर्चा बहुत किया है, सूक्ष्म चर्चाएं की। हरेक को छद्मस्थ को परिणति और उपयोग होता है, अज्ञान दशा में उल्टी परिणति होती है, तो उल्टी परिणति भी अवरोध करती है। जैसे कोई कहेगा कि देखो हम तो हमारा घर छोड़ के इधर आ गए सत्संग के लिए, अब हमको घर का कोई विकल्प नहीं आता, सारे दिन सत्संग करते हैं, घर का विकल्प नहीं आता है, मैंने हमारा उपयोग नहीं जाता, फिर क्यों हमारा काम नहीं होता है? हाँ, ये प्रश्न होता है कि नहीं होता कि उपयोग नहीं चलता है, परिणति तो वहां की चलती है, इसका क्या? परिणति बन गई है वो तो वहां की चलती है, अवरोध करती है, तो आज नहीं होता है तो कल तो होगा, उपयोग वहां चला जाएगा, अभी नहीं चलता है लेकिन बाद में जाएगा, कभी भी जाएगा, लेकिन समझ में नहीं आती परिणति। परिणति बहुभाग जीवों को समझ में नहीं आती कि मेरी परिणति कैसी बन गई है। परिणति जो बन जाती है ये भी एक बड़ा अवरोध होता है, ज्ञानी को सुलटी परिणति बन गई है तो उसका उपयोग लड़ाई आदि में जाने पर भी उसको आपत्ति नहीं होती। अज्ञान दशा में उपयोग में ऐसा ले रहे कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं नायक हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं शुद्ध हूँ, परिणति उल्टी है तो कुछ काम होता नहीं है। पर अज्ञान दशा में परिणति की आत्मस्वरूप की है और उपयोग उल्टा चलता है, लड़ाई झगड़े का। जैसे ये आत्मा का उपयोग बेकार गया वैसे वो अनात्मा का उपयोग बेकार जाता है। इतना परिणति का प्रभुत्व है, परिणमन में इतना परिणति का प्रभुत्व है, और बहुभाग लोग ये समझते नहीं, इसलिए न ज्ञानी को ज्ञानी के रूप में समझते हैं ना अपने को अज्ञानी के रूप में समझते हैं। मैं नायक हूँ नायक हूँ नायक हूँ ऐसा विकल्प करे और परिणति उल्टी चलती हूँ, क्या काम करो, वो विकल्प कोई काम में आने वाला नहीं है। ऐसी बात चालू ही है। उपयोग बाहर में आने पर भी परिणति तो चालू ही है, ऐसे परिणति और उपयोग में फर्क है, उपयोग और परिणति में फर्क है, सभी को होता है, उल्टी सूटी कोई ना कोई परिणति होती ही है। ज्ञानी को भेद ज्ञान की धारा तो चालू ही है, ज्ञानी को तो भेद ज्ञान की धारा निरंतर परिणति के रूप में चालू रहती है, स्मरण नहीं करना पड़ता मैं आत्मा हूँ मैं नायक हूँ, अंदर में चालू ही है, नींद में भी चालू है। क्या ऐसे नींद में परिणति है, फलाना भाई बोले तो हम क्यों जवाब देता है, सो गया था फिर जवाब कैसे दिया, तो परिणति चालू थी कि मैं फलाना फलाना हूँ। ऐसे अमुक अंश जितनी दशा प्रकट हुई उतनी चालू है, उसमें भी भेद प्रभेद है, चौथे गुण स्थान में चौथे गुण स्थान के लायक, पंचम में पंचम गुण स्थान के लायक, छठवें में छठे गुण स्थान के लायक परिणति होती है। तो जितने अंश में दशा प्रकट हुई है, आत्मदशा प्रकट हुई है, उतनी परिणति चालू है उनको, तो उसमें तीव्रता मंदता होती है, घनिष्ठता होती है, ऊपर ऊपर के गुण स्थान में वो समीसार में लेते हैं कि जैसा जैसा आत्मा भेद ज्ञान करता रहता है वो वैसे वैसे विज्ञान घन होता जाता है। क्या लिखा है, विज्ञान घन हो जाता है, तो परिणति घनिष्ठ हो जाती है। वहाँ क्या अभिप्राय है, परिणति घनिष्ठ होती है, वो कहने का अभिप्राय है, दूसरी बात नहीं है। आत्मा तो जैसा है वैसा एक रूप है, हमेशा मूल स्वरूप है, परिणति में घनिष्ठ पड़ा हुआ तो आत्मा विज्ञान घन हो गया ऐसा कहने में आता है। तो अंश पर है, उसमें भी तारतम्य अंश बहुत है, बहुत भेद है, अनंत भेद है, ऐसा नहीं। भेद ज्ञान ही स्वानुभूति का उपाय है, जिसको ऐसी यथार्थ स्वलक्षी समझ आती है वह जीव अन्यथा प्रकार से पुरुषार्थ करेगा नहीं। बताओ कार्य पद्धति के विषय में कुछ भ्रांति नहीं हुए, नहीं होनी चाहिए, ऐसा परमार्थ यहां से निकालना चाहिए। परिणति और उपयोग में जो अंतर है वो अंतर को समझ करके ज्ञान दशा की परिणति हमें उस प्रकार वेद ज्ञान करना चाहिए जिससे आत्म परिणति बन जाए। और यही कर्तव्य है,
सुखं